जिस समय आपका देश आजाद हुआ था, अंग्रेजी शासन यहां से समाप्त हुआ था, उस समय मैंने राजेंद्र बाबू से पूछा कि बाबूजी ये बताइए कि लीडर का अंत यदि मिनिस्ट्री में हो जाएगा तो लीडर कहां से आएगा। और वही हुआ, नतीजा ये हुआ कि देश नेता विहीन हो गया। आप देखिए आज देश की नैतिकता कितनी गिर गई कि नहीं, ये गिर गई ना। मतलब क्या हुआ कि जो नेता अगर मिनिस्टर बन जाएगा जी, तो फिर नेता नहीं रहेगा तो सरकार में और प्रजा में एकता कौन रखेगा, क्या राय है? नीति रख सकता है, समझ आएगा ना। इसी तरह से अगर सेवा का अंत त्याग में नहीं हुआ तो फिर सेवा क्या हुई, सेवा क्या हुई, सेवा तो नहीं रही। और त्याग का अर्थ क्या है भैया? त्याग का अर्थ केवल घर छोड़ देना नहीं है, हिमालय की कंदरा में घुस जाना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि हर मानव, हर भाई, हर बहन ज्ञान पूर्वक ही अनुभव करे कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। त्याग का एक अंग। दूसरा अंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मेरा कुछ नहीं है तो शरीर और संसार का तो विभाजन हो ही नहीं सकता। यानी तीनों शरीरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे नहीं है, संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं, मिला हुआ मेरा नहीं है, दिखाई देता है उससे कुछ चाहिए नहीं, ये हुआ त्याग। इस त्याग का फल होता है कि आप अपने में संतुष्ट हो जाएं, अपने आप। और जब आप अपने में संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान की वाणी है गीता भगवती, तो मेरी आदत नहीं है प्रमाण देने की, लेकिन आप लोग मानेंगे थोड़ी, तो उसमें लिखा है कि आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्ट होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता, पढ़ लेना। तो आत्म संतुष्ट, अपने में संतुष्ट होने से तीन चीजें मिल जाएंगी, अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन, रसरूप जीवन। रसरूप जीवन कहो चाहे प्रेम कहो, स्वाधीन जीवन कहो चाहे मुक्ति कहो, अविनाशी जीवन कहो चाहे नित्य जीवन कहो। तो अगर आपको अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप जीवन चाहिए तो अपने में अपने को संतुष्ट करना ही होगा। अब कोई कहे कि साहब अपने में संतुष्ट करने से ऐसे क्यों मिल जाएगा, तो वही मैं ये कहता हूं, भाई अपने में परमात्मा है, ये तीनों विशेषण परमात्मा के हैं, जिसका कभी नाश न हो, हैं? जो परम स्वतंत्र हो, जो अगाध अनंत रस रूप हो, ये परमात्मा के लिए विशेषण है। अनंत रस, परम स्वतंत्र, अविनाशी परमात्मा ही है। तो इसलिए क्योंकि अपने में संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब हम बेपढ़े लोग तो ऐसे संतुष्ट करते हैं, और पढ़े लिखे क्या कहते हैं, ऐसा आपको तो मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मुझ में नहीं है। ये पढ़े लिखों की बात है भाई, तो भूल जाने, तो ये तरीका है। मैं ये नहीं कहता हूं वो पद्धति गलत है, वो भी है, पर मैं उससे परिचित नहीं हूं। मैं इससे परिचित हूं कि जब मनुष्य चाहे तो शरणागत होकर, चाहे अचार होकर, चाहे बल के सदुपयोग के द्वारा जरूरी काम पूरा करके, जरूरी काम छोड़ के, किसी तरह से अपने में संतुष्ट हो जाना चाहिए तो आपको अपने में परमात्मा मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये तो आपके अभी अनुभव करने की बात है। आप अपने में संतुष्ट होकर देखिए तो सही, आप अचार हो बिना हुए अपने में संतुष्ट हो नहीं सकते, जरूरी काम पूरा बिना किए अपने में संतुष्ट हो नहीं सकते, बिना जरूरी काम को छोड़े बिना संतुष्ट हो नहीं सकते, समर्पित हुए बिना हो नहीं सकते। तो चाहे आस्था के आधार पर शरणागत होकर अपने में संतुष्ट हो जाइए, चाहे कर्तव्य पथ से अपने में संतुष्ट हो जाइए, चाहे विचार पथ से अपने में संतुष्ट हो जाइए, अपने में संतुष्ट होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये अनुभव सिद्ध सत्य है। फिर भी नजत है मत मानिए, तो कोई आपत्ति तो है नहीं, मेरा कोई आग्रह तो है नहीं। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो आप मान लीजिए, लेकिन अगर आपकी समस्या हल हो तो मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए। अनेकों मार्ग हैं, अनेकों लोग हुए हैं, अनेकों ढंग से एक ही परमात्मा को प्राप्त किया है, तो एक ढंग से तो किया नहीं है। अरे जब दो व्यक्ति भी समान योग्यता रुचि सामर्थ्य के नहीं है तो सबकी एक साधना कैसे हो सकती है, एक तरीका कैसे हो सकता है, अलग अलग ही होगा। तो मेरा निवेदन ये था कि आप भगवान को अगर मानते ही हैं, मानिए, मैं मजबूर नहीं करता हूं, क्योंकि इससे बड़ा मैं भगवान का क्या अपमान करूंगा कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मान लीजिए तो हमारे भगवान इतने घटिया हो गए जो आपसे प्रार्थना की जाए, इतना बड़ा भारी अपमान समझता हूं भगवान का। हाँ, अगर आपका काम नहीं चलता है तो मान लीजिए, तो वे इतने उदार हैं, वे इतने महान हैं, वे इतने परम सुहृद हैं कि अगर आप उनको पसंद कर लेंगे तो वे आपको अवश्य अपना लेंगे, चाहे आपका भूतकाल कैसा ही क्यों न बीता हो। आप विचार कीजिए, अमूल्य परमात्मा, अनमोल परमात्मा आपके छोटे छोटे मोलों से नहीं मिला करता। क्या सीमित गुणों से कहीं अनंत गुण वाला प्राप्त हुआ है, कहीं सीमित बल से कहीं अनंत बल वाला प्राप्त हुआ है? असंभव, सर्वदा असंभव। हां, समर्थ की प्राप्ति का एक ही जरिया है कि उसको पसंद कीजिए, उसके होकर रहिए, उसके नाते वर्तमान कार्य को विधिवत कीजिए, वो उसकी पूजा है। आप काम करते हो, हम कहते हैं भाई पूजा करो। आप अभ्यास करते हो, हम कहते हैं स्वीकार करो। आप बौद्धिक परिश्रम करते हैं, हम कहते हैं ज्ञान पूर्वक अनुभव करो। इतना ही तो फर्क है, और उसके फर्क है नहीं। बाकी मैं आप जो करते हैं उसका विरोध थोड़ी करता हूं, मेरा विरोध नहीं है किसी भी साधन प्रणाली से, मेरा विरोध नहीं है। हम क्या बताएं, हमारे एक दफा आश्रम में अंग्रेज आया और उन दिनों साधन सत्संग मास चल रहा था, एक महीने के लिए सत्संग का आयोजन किया था। तो उसने कहा, क्या मेरा हर बैठक में, हर सिटिंग कहते हैं अंग्रेजी सर, बैठना शामिल होना जरूरी है? मैंने बिल्कुल नहीं, मैं तब भी मेरा ठहर सकता हूं, मैं जरूर ठहर सकते हो। अरे हम अपनी बैठक का अपमान करेंगे, आपके बैठे की तुम्हारी बैठक बनेगी? तो उन्होंने कहा, ऐसा तो मैंने कोई आश्रम देखा नहीं जहां इतनी स्वाधीनता हो। फिर उसने कहा कि आप मुझको मेडिटेशन बता सकते हैं क्या, ध्यान करना बता सकते हैं क्या? मैंने नहीं, लिखो मैं तुमसे होगा नहीं हूं। अरे भाई बताया जाए न हो तो लाभ क्या हुआ। तो मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि अगर परमात्मा के मानने वालों को परमात्मा की याद नहीं आती और करनी पड़ती है, ये कोई कम दुख की बात है, ये कम आश्चर्य की बात है क्या भैया? अरे मरे हुए बुजुर्गों की याद आती है आपको, गए हुए धन की याद आती है आपको, नहीं आती जी? तो परमात्मा इतना घटिया हो गया तो उसकी याद आपको करनी पड़े, क्या राय?
हमारे संस्कार बड़े विचित्र हैं।
बिल्कुल बात मत करो यार, संस्कार संस्कार कुछ नहीं, गलत बात है।
याद नहीं आती,
मैं बताता हूँ, याद नहीं आती थी कि आप अपना नहीं मानते। देखो संस्कार सामने आ सकता है, अगर आप हाँ न कर दे मिट जाता है, वो मंत्र भी हमको मालूम है, लेकिन आप लोग तो प्रश्न करते हैं हम कहां से, क्या अपने तरफ से कहां कौन खोद खोद निकाले जितने संस्कार, वो क्या काम करेंगे? संस्कार होते हैं भोगे हुए की, जिन सुखों को आपने भोगा उनका ख्याल आएगा, यही ना संस्कार है? बोलो, और तो नहीं है ना? पहले मान लो तो आगे बढ़ू, बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल। अच्छा, कोई आपके सामने अगली चाय का कप रखे हो, आप पिए तो चाय देखने से आपका पाप लग जाएगा क्या? बोलो, है? और संस्कार आया और आपने समर्थन नहीं किया तो क्या करेगा वो?
समर्थन कैसे न करें,
हमारी कैसे ना करें, उसकी हम अकेले अथॉरिटी है, सही बातें कौन करे? तो संस्कार का समर्थन
मजबूरी तो यही आ रही है
महाराज, नहीं नहीं यही हाथ की बात है, और संस्कार को चिंतन से मिटाना बिल्कुल हाथ की बात नहीं।
महाराज भीतर क्या है जो समर्थन करा देता है?
देखो भाई, सनातन कुछ नहीं करा देता है, तुम लोगों को भ्रम हो गया है। बुरा तो नहीं मानो, कोई बुरा मत मान, नहीं देखो मैं कोई द्वेष नहीं कहता हूँ। आप लोगों को ये भ्रम हो गया है कि हम बलपूर्वक संस्कार मिटा लेंगे, ये भ्रम हो गया है। हम चिंतन से चिंतन को मिटा लेंगे, यानी होने वाले चिंतन को आप लोग करने वाले चिंतन से मिटा लेंगे, ये भ्रम हो गया, ये भ्रम हो गया है। बढ़िया, तो सब बात करने समझा रहा हूँ। सरल नहीं, सरल नहीं,
आप बुद्धि आ रही थी।
मैं आप निवेदन करता हूँ कि जो होने वाला जो चिंतन है ना, उसको आप करने वाले चिंतन से मिटाना चाहते हैं, कभी नहीं मिटेंगे, करने वाला खंड है नहीं। अब होने वाला चिंतन मिटता है होने वाली स्मृति से, होने वाला चिंतन, होने वाला चिंतन ही कह दो, तुम्हें कोई आपत्ति हो, आप समझ में आता हो, तो होने वाला चिंतन मिटता है होने वाले चिंतन से। तुम होने वाले चिंतन को मिटाना चाहते हो करने वाले चिंतन से, उसे डरते क्यों? देखते रहो, बिल्कुल देखते रहो। अगर तुम हां नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा, और उससे लड़ोगे नहीं तब भी नाश हो जाएगा, और उससे मिलाओगे नहीं अपने को तब भी नाश हो जाएगा। तीन तरह से नाश हो जाएगा, हां मत करो, उससे लड़ो मत, उससे अपने को मिलाओ मत। एक दिन घर में सुना है हमारे पास तो बड़े बड़े तार्किक आते हैं, तो देखी शुरू शुरू में आई थी, उनसे मैं बात कहता हूँ, बहुत तर्क करती थी, मनोविज्ञान की पंडित ठहरी भाई, ऐसी ऐसी दलीलें रखती थी कि हम आपको क्या बताएं। हम ठहरने जाते थे कई आदमी मिलकर, तो जाकर बैठते एक जगह, वहां हमने एक पत्र उठाया और उठाकर उसे खूब प्यार किया, और ईमानदारी से प्यार किया, जैसे कोई उसको चूमा, उसको प्यार किया, कभी आंसू भी आ जाए, जैसे ईमानदारी से प्यार करते हैं शरीर द्वारा प्यार किया। और जब वहां चले तो कहते भाई खन फिर मिलना, चले आए दूसरे दिन जाए बैठ जाए, हमारा हाथ उसी पत्र पर चला जाए, हमने किसी से पूछा नहीं, हमारे पत्र ढूंढ दो आपको संदेह। कई दिन तक ही होता है, लड़कियां कहें स्वामी क्या करते हैं ये, कुछ नहीं करते हैं। तो आखिर जब कितने दिन हो गए हमेशा पत्थर मिलता रहा, तो हमने देवी जी से पूछा, देवी जी बताओ तुमने देखा मैंने पत्थर को तुमसे दिखवाया था क्या? नहीं तो अच्छा मिल जाता था कि नहीं? हाँ मिल जाता था। तो देखो प्यार ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पसंद आता है तो परमात्मा को पसंद नहीं आएगा? तो भाई होने वाले चिंतन को करने वाले चिंतन से आप मिटा नहीं सकते हैं, और इसमें आप ही के जीवन का अनुभव है कि कितना काल बीत गया आपको चिंतन करते करते। क्या आप ऐसा वैसा मान के, मैं आपको थोड़ी कहता हूँ पहली बार आप आए हैं, आपने बरसों हो गया आपको जप करते हुए, बरसों हो गया चिंतन करते हुए, बरसों हो गया पोथी पढ़ते हुए, बरसों हो गया अभ्यास करते हुए, नहीं हो गया क्या? फिर भी आपकी वही शिकायत है, आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी।
मारे तो इसका अनर्थ का हेतु इसको समझ, जो हमारे संस्कार आते हैं किसी वस्तु के साथ हमसे, वो दुख रूप है हमारे लिए अनर्थ का हेतु है, तो फिर उसे हट जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, अनर्थ संस्कार अनर्थ का हेतु नहीं है, अनर्थ का हेतु वो कर्म है जिससे तूने वो संस्कार बनाए। माफ करो, आप बात मानते हो ठीक है, लेकिन आप मनोविज्ञान से अपरिचित से मालूम होते हैं मुझको, माफ कीजिएगा। ये द्वेष का चिंतन करते करते, संसार की निंदा करते करते निंदनीय स्वभाव बन गया हमारा। कोई चीज अनर्थ का हेतु नहीं है, हमारी भूल अनर्थ का हेतु है, और भूल ये है कि हम संस्कार का समर्थन न करें, बस खत्म। हम परमात्मा को पसंद करें, खत्म। हम बुराई न करें, खत्म। हम भलाई का अनुमान न रखें, ठीक। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि द्वेष चिंतन करते करते, देखिए आप ये मत कहिए कि आप जो कहते हैं, आप कहते हैं वो तो बड़ी ऊंची बात कहते हैं और शास्त्रीय परंपरा की बात कहते हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आपको, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। शास्त्र में पूरक पक्ष भी होता है, शास्त्र में उत्तर पक्ष भी होता है। एक पुरानी कहावत है, महाभारत की कथा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुमने क्या समझा, कि मैंने ये समझा कि द्रौपदी ने पांच पति किए थे, मैं भी करूंगी। इसलिए थोड़ी कथा हुई थी। उन्होंने भाई से पूछा तुमने क्या समझा, कि दुर्योधन ने कहा सूर्य के नोक के बराबर नहीं दूंगा, मैं भी हिस्सा नहीं दूंगा तुमको। तो भैया शास्त्र पढ़ने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु उसे कहते हैं जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया हो, नहीं तो ये प्रेस वाले सभी शास्त्र की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। शास्त्र का समझना कोई मजाक है क्या? अरे तुम अपनी बात तो समझ नहीं पाते, शास्त्र ही समझ लोगे? तो मैं इसलिए उसकी बात चर्चा नहीं करता, मैं तो शास्त्रों में श्रद्धा रखता हूं, हाथ जोड़ता हूं वैसे ही शास्त्रों के, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्र के आधार पर हम लोग अकारण एक आध बात कह डालते हैं और लड़ रखते हैं, सो मत लड़ो, धीरज रखो, आप का ज्ञान हो गया
आत्मा नहीं प्रश्न पूछ रहे
हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, और वेदों का ज्ञान और संतों का ज्ञान इसमें एकता है। एक घटना सुना दूं आपको, इधर मैं गंगा किनारे बैठा था, अच्युतमुनि महाराज वेदांत के अद्वितीय पंडित माने जाते थे, जो लाहौर कॉलेज में कोई प्रोफेसर थे, पंडित दौलत राम नाम था, फिर अच्युतमुनि हुए थे, सेठ गौरीशंकर के जो गुरु थे, वो मुझसे अपने आप कहने लगे, अरे शांत हाँ, मैंने कहा महाराज तू जानता है ज्ञान क्या है, महाराज मुझे क्या मालूम ज्ञान क्या है, अरे शांत को ज्ञान है ज्ञान से क्या मतलब, जो बेमालिक का हो जिसका कोई आधार न हो वो सोचे, तो देख भैया सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि लोग ये समझते हैं कि व्यास में ज्यादा ज्ञान था मुझ में कम है। तो हमको तो भगवत कृपा से बड़े बड़े अच्छे लोग मिले, जिसको जो जरूरत हुई बता गए चले गए। हाँ क्या प्रश्न थे
महाराज जी, बात यह आई कि आप कह रहे थे कि जो होना है उसको करना क्रिया से नहीं मिटेगा,
मैंने
करके मिटाना चाहते हो,
जो बात हो रही है
हो रही है उसको करके मिटाना चाहते हो, ये
संभव नहीं है, ये हमारे जानते संभव हमारे जानते ये संभव नहीं है,
ये मतलब ये आप ये तो आपका अनुभव में नहीं आवा, एक दूसरी बात है।
हाँ तो
आपका नहीं देता,
अगर किसी का मिट जाए तो मुझे क्या अभिप्राय है बाबा, मैंने कहीं ये थोड़ी कहा है कि सारी दुनिया इसको मान ले,
मेरे ये बात जची हुई है कि जैसे आपके ये जची ना ऐसे मेरे भी ये बात जची हुई है, संतों की वाणी सुन कर करके शास्त्र देख कर करके कि पहले प्रारंभिक जो बात होती है वो क्रिया से होता कि उसको कर्म योग कहो, एक मन में मेरे बुरे संकल्प हो रहे हैं उस बुरे संकल्प,
अरे बाबा तो मैं कहां मने करता हूँ बुरा, क्यों तो आप माने मैं तो नहीं देती,
कहो कि ये भ्रम है।
हाँ मैं तो मानता हूँ भ्रम है
भाई, तुम अपने स्वामी
महाराज कृपानाथ मैं तो बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ ये भ्रम है और नहीं मिटा है, और इसका अनुभव लोगों का जीवन भी है जो मुझसे सवाल करते हैं। अब रही क्रिया की बात जो है महाराज, इसका मैं दूसरा अर्थ लेता हूँ, कर्म का मतलब यह है कि जो बात नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो, तो जो करना चाहिए उसके करने वो होने लगेगा, तो होने में आ जाएगा,
और पहले तो करना आरंभ होगा ना।
अब आप जबरदस्ती क्यों करते हो,
तो
जबरदस्ती मत करो, आप वही मानो,
नहीं मैं जबरदस्ती
सब लोग वही मान लें, मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन आप मेरी बात पूरी सुन लेने दीजिए और आप भी सुन लीजिए, करने न करने वाली बात छोड़ देने से करने वाली बात अपने आप होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे अगर कोई झूठ बोलना छोड़ दे तो सत्य बोलने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बोलेगा। जैसे कोई बेईमानी करना छोड़ दे तो ईमानदारी के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई संसार का चिंतन छोड़ दे, मैं नहीं करूंगा, और अपने आप सामने आए तो उसका समर्थन न करे, यही उसका छोड़ना है। मैं तीन बात बताई ना, उसका समर्थन न करे, उससे मिलाए नहीं, उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से उसकी सत्ता बन जाती है, न लड़ने से वो अपने आप मिट जाता है। तो ये एक मानव मनुष्य
महाराज जी, आप जो बात बोलते हैं ना ये बात की आवृत्ति में बहुत दफे मेरे को सुनने को मिलती है, लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं उस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए, उसको आपको आप उसको भ्रम क्यों कहते हैं।
हमको भ्रम लगता है, इसलिए भ्रम कहते हैं, कोई पाप नहीं करते, हम कोई झूठ नहीं बोलते, हम उनको धोखा नहीं देते, तो मैं कहता हूँ आपकी बात मान लें हम वापस लिए,
अपना अनुभव की बात मैं आपके सामने रखूँ, उसमें आपका
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका अनुभव आपके लिए सत्य है, मेरा अनुभव मेरे लिए सत्य है, आपके अनुभव को लोग मान लें, मेरी बात को न माने, मुझे कोई आपत्ति
नहीं, मानने का तो प्रश्न नहीं करूँ मैं, लेकिन भ्रम जो बात का है
मैं तो मुझे तो भ्रम मुझे देखिए महाराज मुझे तो भ्रम लगा है इसलिए मैं भ्रम कहता हूँ।
जैसे एक आदमी के बुरे संकल्प हो रहे हैं और बुरे संकल्प
को समझाते हैं, मुझे समझाते हैं लोगों,
और वो यदि भगवान के नाम रूप का वो चिंतन करे तो उससे वो बुरे संकल्प अपने आप मिटेंगे महाराज जी।
भाई महाराज किसे समझाते हैं मुझे किन लोगों को, आप तो समझे हुए हैं और मैं मानने वाला हूँ नहीं, और ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ,
आप करें लोगों की आदत जो
मैं करता हूँ, देखिए आप जाने बिना वजह मुझे बच्चों लालचन लगाते हैं, मैंने किसको मने किया है कि तुम चिंतन करना छोड़ दो, मैंने तो किसी को मने किया नहीं। अरे ये बात तो श्रद्धेय गोयनका जी हमसे हमेशा कहते थे कि शरण का हमारा 14 आना सिद्धांत मिलता है, 2 आना नहीं मिलता है, मैंने कौन सा नहीं मिलता है कि वो भजन ध्यान की बात नहीं कहता, तो मैंने कहा विरोध करता हूँ, बोले विरोध नहीं करता। तो मैं कहता हूँ सबका मिट जाए बड़ी अच्छी बात है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, पर मेरे तो कान पके गए सुनते सुनते। क्या आप जानते हैं, समझ में आती है बात, ठीक मालूम होती है, पर जीवन में नहीं उतरती। 40-40 वर्ष के सत्संगी ये कहते हैं। तो मुझे जनता जनार्दन की सेवा करना है, ईमानदारी से करना है, और मेरा विरोध है ही नहीं। मैं कोई भगवत चंद्र का विरोधी हूँ? मैं तो भगवत चंद्र का विरोधी नहीं हूँ, न ध्यान का विरोधी, न चिंतन का विरोधी, लेकिन होने वाला चिंतन जो है वो करने वाले चिंतन से मिटता होगा, ऐसा मेरा विश्वास भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। और किसी का मिट जाए तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं, मुझे काहे को ऐतराज होगा भैया, भगवान करे सबका मिट जाए। अरे सुंदर मां, मैं तो प्रार्थना करता हूँ उसमें भी यही कहता हूँ कि विवेक का बल, विवेक का आदर और बल के सदुपयोग प्रदान करें। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं किसी को बुरा चाहता हूँ क्या? मैं किसी सिद्धांत का विरोध करता हूँ क्या? मैं कोई आग्रह रखता हूँ क्या? पर मुझसे उपाय पूछो तो मैं यही जानता हूँ। और इसको न जचे मत मानो, बिल्कुल मत मानो। सभी बातें तो कोई किसी की मानता भी नहीं है, मान सकता भी नहीं है, और सभी की मानी होती तो आज सुनने की जरूरत ही क्या रहती। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, अगर मान ली गई होती बात तो सुनने की जरूरत भी नहीं रहती। तो मेरा नम्र निवेदन इतना ही है कि मेरा अनुभव यही है कि होने वाला चिंतन होने वाले चिंतन से मिटेगा, और होने वाला जो चिंतन होगा वो स्मृति के रूप में होगा, वो प्रियता के रूप में होगा। और स्मृति जो होगी वो स्वयं उदय होगी, उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होगी, करण की अपेक्षा नहीं होगी। अगर ये बात नहीं जचती है तो न मानी जाए। मैं तो कभी आग्रह नहीं करता हूं, हम तो कहते हैं आपकी बात से लोगों का कल्याण हो जाए, बड़ी सुंदर बात है। मुझे कल्याण अविष्ट है, मुझे कोई अपना मत अविष्ट तो है नहीं,
मेरा इतना ही निवेदन था।
हाँ, वो मेरा आपका जो निवेदन था वो मेरी समझ में आया नहीं है, आएगा नहीं, क्योंकि मैं भी समझ देख लिया है। और आपका कहना, आप कहते हैं आप में केवल उतना ही नहीं है, आप में बहुत ताकत है, आपको शांति दूसरे ढंग से मिल गई है इसलिए आपको मालूम। और ये तो लोगों को थोड़ा कठिन लगता है कि मैं भगवत चिंतन का विरोध करता हूँ, मैं कठिन लगता है सुनने में, मैं भगवत स्मृति जगाने का प्रयास करता हूँ, आप चिंतन करने की बात कहते हैं, इतना ही फर्क है। मैं कहता हूँ भगवत स्मृति जागृत हो जाए, आपका भला हो जाए जल्दी, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है, न जाने कब क्या हो जाए, मेरा तो मत है ये। और जिनको दीर्घ काल का भरोसा है, जन्म जन्मांतर का भरोसा है, वो वैसा करे।
स्मृति निरंतर बनी रहे।
अरे स्मृति हमेशा निरंतर रहती है, उसे स्मृति कहते ही नहीं जो मिट जाए। देखो अभ्यास मिटता है, होने वाली बात मिटती नहीं है। स्मृति का ही अर्थ बोध है, स्मृति का ही अर्थ प्रेम है, स्मृति का ही अर्थ योग है। और आप देखेंगे साधकों ने, बहुत सो ने कहा है कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे परम विश्राम मिल गया। ये एक ने नहीं, अनेकों ने कहा है। तो आप तो सीखने वाली बात को के संबंध में कह सकते हैं कि बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, तो वो तो नहीं बनी रहेगी, लेकिन होने वाली बात तो बनी रहेगी। स्मृति तो होती है, आत्मीय संबंध से स्मृति होती है, निष्कामता से शांति मिलती है।